इस विषय पर पहले गुरुदेव की कुछ वाणी श्रवण करें, उसके पश्चात इस पर विचार होगा।
आसा माही जन्म या आसा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहाए। आसा माही जन्म या आसा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहाए। जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। सकल कर्म का करता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। हाथ पाँव नित कर्म में, मन में साचा राम, अनन भगत कर छोटिए, मिटे 84 जाम। जो देखा सो दुखिया, किस से करूं विचार, तृष्णा लागी अग्नि, रोए कुल संसार। अगन स्वरूपी कामना हृदय करे अंगार, तिस जन पाई शांति, जिन सिमरा सरजन हार। करता भाव से वासना, वासना से संसार, ये ही अज्ञान है जीव को आवागवन दुख सार। काम न रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कर्म वासना भ्रम जीव को तीन काल भर माए, मंगत नाम प्रभु सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। कर्म वासना भ्रम जीव को तीन काल भर माए, मंगत नाम प्रभु सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए।
हमारा जीवन हर प्रकार के कर्म करने के पश्चात भी चिंता से मुक्त नहीं हो पाता, कोई ना कोई मानसिक बेचैनी हमको परेशान करती रहती है। इसीलिए इस कर्म विज्ञान को समझना जरूरी है कि कर्म करते हुए हम चिंता से कैसे मुक्त हो सकते हैं या शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमको स्वभाव को समझना पड़ेगा कि मनुष्य का स्वभाव है क्या। किसी भी मनुष्य को देख रहे हैं हम, दो चीजें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। हर मनुष्य में एक नए सुख की चाह होती है, जो कुछ भी सुख उसको प्राप्त है उसमें वो संतुष्ट नहीं होता, कुछ नए सुख की तलाश करता है। चाहे वो छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, आप कुछ भी दे दीजिए, हमेशा वो खिलौना है तो नया खिलौना मांगेगा, वस्तु है तो नई वस्तु मांगेगा। चाहे वो बड़ा व्यक्ति है, अच्छे से अच्छा वस्त्र भी उसको दे दीजिए, फिर भी उसको नया फैशन का, नए डिजाइन का, नए प्रकार का वस्त्र चाहिए। खाने की वस्तु भी एक प्रकार से बढ़िया भी देते रहिए, फिर वो डिमांड करेगा कि कुछ नया पदार्थ खाने को चाहिए। बढ़िया से बढ़िया वस्तु देख ले संसार में, वो बढ़िया से बढ़िया दृश्य देख ले, फिर भी उसके अंदर ये तमन्ना बनी रहती है कि मैं नया दृश्य देखूं। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, हर मनुष्य का स्वभाव है, चाहे विश्व के किसी कोने में क्यों ना हो, वो हमेशा उसके अंदर नए सुख की तलाश बनी रहती है, नए सुख की चाह बनी रहती है। इसीलिए ये वाणी जो सुन रहे थे आप, ये इसका जो दोहा था, आशा माही जन्मया, आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यास आ रहा है। इसकी प्यास यहां से शुरू होती है कि नए सुख की तलाश, यही इसकी प्यास है। और इसमें हम कितनी तैयारियां करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं और कितनी वस्तुएं, कितना घूमने फिरने में, कितने स्वाद लेने में हम तरह तरह से जो है बेचैन होते हैं, ये हम सबका अनुभव है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी चीज जो सबके स्वभाव के अंदर है, एक दुख का भय। हर मनुष्य एक अनजाने दुख से परेशान रहता है, पता नहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, पता नहीं बिजनेस ठीक चलाइए कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा, बच्चा स्कूल गया है वापस ठीक प्रकार से आएगा नहीं, विद्यार्थी मेहनत कर रहा है पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे भी नहीं आएंगे, उसे एक अनजाना भय हर मनुष्य को लगा रहता है, जिसकी चिंता में वो जो है वो बेचैन रहता है। इसी को देखकर ये वाणी कह रही है कि जो देखा सो दुखिया, किससे करूं विचार, तृष्णा लागी अग्नि, रोए कुल संसार। इस तृष्णा की अग्नि में और इस भय में सारा संसार रो रहा है। रोने का मतलब मानसिक रूप से बेचैन है, टेंशन उसके दिमाग में। अब इस दुख से बचने का मार्ग वो क्या तलाश करता है? हर मनुष्य के अंदर एक निश्चय होता है कि मैं यदि कोशिश करूं तो मेरे सामने जो दुख है इससे मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। ये उसकी हर व्यक्ति की सोच होती है, मेरे सामने जो कमी है या दुख है या मुसीबत है, मैं अपनी कोशिश से उसको दूर कर सकता हूं। इस विश्वास को लेकर, या यूं कहिए इस अहंकार को लेकर वो कर्म करता है, उस कमी को दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए। इसी कारण होता क्या है, उसके अंदर तरह तरह की वासनाएं पैदा होती हैं, तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं, तरह तरह के रास्ते वो खोजता है उस कमी को दूर करने के लिए, जिसके बारे में वाणी कह रही है, कर्ता भाव से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को, आवा गवन दुख सार। इस कर्तापन के कारण, इस अहंकार के कारण कि मैं कर सकता हूं, वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी तरह तरह की वासनाएं खड़ी होती हैं, इस प्रकार से उसका संसार बढ़ जाता है और पता नहीं बीच में कब उसकी मौत हो जाती है, और इसी इच्छा को लेकर फिर नए शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार आवागमन के दुख में वो निरंतर भटकता रहता है। तो विचार हमने क्या करना है, विचार हमने ये करना है कि मेरे जो मेरा जो कर्तव्य है या मेरी जो कर्म करने की जो सामर्थ्य है उसकी एक सीमा है, जो चाहूं मैं नहीं कर सकता। ठीक है, हर मनुष्य ठीक प्रयास करता है, अच्छी पढ़ाई भी करता है, अच्छी नौकरी तलाश करने की कोशिश करता है, घर भी बनाता है, सब चीज ठीक ठाक चलती है, लेकिन फिर भी दुख उसके जीवन में आ जाता है। जरा देर में भूकंप आता है, देख लिया आपने, भुज के अंदर भूकंप आया, क्या हालत हो गई। कश्मीर में भूकंप आया, क्या हालत हो गई। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्या हालत हो गई। सब कुछ बना बनाया दो मिनट नहीं लगते उजड़ जाता है। अभी देखिए फरवरी का महीना है, कैसी गर्मी हो गई। तो प्रकृति मेरे हाथ में नहीं है, इस ब्रह्मांड की जो घटना है वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा अपना शरीर ही मेरे हाथ में नहीं, जिंदगी मौत मेरे हाथ में, ये भी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कितना अहंकार है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने दुख मेरे दूर कर सकता हूं। इसलिए सबसे पहले हमें यह सोचना है कि मेरी सीमा कहां है, मैं क्या कर सकता हूं और क्या मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मनुष्य को अपनी इस लिमिटेशन को सीखना होता है, मेरी एक सीमा है, उससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, बाकी चीज किसी और सत्ता के हाथ में। तो कहते हैं कि फिर वो करे क्या, खुद पुरुषार्थ से तो कर सकता है बेचारा, लेकिन अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन का दुख दूर कर लेगा इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। जैसे जिंदगी बिल्कुल अनिश्चित है, तो यहां आकर सतपुरुष क्या मार्गदर्शन करते हैं वो सीखने की जरूरत है। वो कहते हैं यहां पर, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मारग धर्म में जीव शीतल हो जाता। ये डायरेक्शन यहां से शास्त्रों की हमारे लिए प्रारंभ होती है, हमारा जो कर्म विज्ञान है यहां से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं कि धर्म के मार्ग में चलकर तुझको शांति प्राप्त हो सकती है। शांति का मतलब संतुष्टि, संतुष्टि की हालत, जिस मार्ग पर चलकर मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन हम शांति किसको समझते हैं, यदि मेरे सामने आज कोई मुसीबत खड़ी हुई है, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, मुसीबत खड़ी हुई है, मेरी नौकरी छूट गई है, वो मेरे सामने मुसीबत खड़ी हुई है, यदि मेरी नौकरी मिल जाए मुझको को अच्छी कोई दूसरी, तब कहता हूं कि जीवन मेरा बड़ी शांति से कट रहा है। तो हम इसको शांति कहते हैं, लेकिन ये तो बड़ी ही टेम्परेरी है, तो किसी पल किसी क्षण ये दो मिनट नहीं लगते खत्म हो जाती है। लेकिन सत्पुरुष परमानेंट शांति की बात करते हैं, जिसको प्राप्त करके मनुष्य जो है वो हमेशा के लिए जो संतुष्ट हो जाता है, कहते हैं वो धर्म का मार्ग है। तो वो शांति क्या है जिसके लिए बारे में शास्त्र वर्णन कर रहे हैं वो जरा समझें। देखिए इसकी व्याख्या गीता कर रही है, गीता में इसकी व्याख्या की गई शांति की, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नष्टिकी। गीता के पांचवें अध्याय में कहते हैं, निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भक्ति भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। शांतिम आपनोति नष्टिकी, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। तो जिस शांति की बात सत्पुरुष करते हैं, जिस शांति की बात शास्त्र करते हैं, उस शांति का नाम है ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर का अनुभव या ईश्वर को जानना, वो है शांति। जब तक मनुष्य ये काम नहीं कर लेता, उसकी अशांति कुछ भी वो क्यों ना कर ले, 1,00,000 जन्म भी मिल जाए, 1,000 वर्ष की आयु भी मिल जाए, उसकी अशांति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसका इलाज संसार में नहीं है। लेकिन हमारी जो धारणा है एक और है, हम सोचते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं शरीर हूं और शांति जो है, जो अशांति जो है वो शरीर में ही है, शरीर करके मुझको शांति मिल सकती है। लेकिन थोड़ा विचार करके देखें तो विचार करने की बात यह है, शरीर तो सो रहा है, मैं फिर भी अशांत हूं। ये अशांत कौन है और किसके कारण अशांत है? हमने शांति को अशांति को समझना है, तभी यह कर्म विज्ञान समझ में आएगा। मैं कौन, ये कौन अशांत है सोते वक्त भी और किसके कारण अशांत है? तो हम सब जानते हैं कि स्वप्न में हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं उसके अनुसार स्वप्न की रचना हो जाती है। जैसे जैसे हमारे मन में ख्याल आते हैं स्वप्न की रचना हो जाती है, और उस पर मेरा कोई कमांड नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उस स्वप्न के अंदर मुझको दुख सुख जो भी मिलते हैं मैं उसको भोगता हूं। इसका मतलब मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो स्वप्न की रचना को देख रहा है, मैं वो हूं जो मन के संकल्प को देख रहा है, या यूं कहिए जो मन के संकल्प के वशीभूत हो रहा है। इसी को सत्पुरुषों ने बुद्धि करके कहा है, इसी को जीव करके कहा है, इसी को उन्होंने मनुष्य करके कहा है। तो शरीर मनुष्य नहीं है, शरीर से ये मनुष्य नजर आता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य इस शरीर के अंदर रहता है, जिसको हम बुद्धि, जीवात्मा या केवल जीव कह देते हैं। तो ये जीव मन के बंधन के कारण बेचैन रहता है, अशांत रहता है। तो ये जो कामना है ये मन का संकल्प है। तो जब अशांति हमारे कारण क्या है, इस मन ही जो है हमारी अशांति का कारण है। तो कहते हैं कि फिर इस बेचैनी को दूर करने का इलाज क्या है? भाई शरीर तो रोगी होता है, आप दवा ले लेते हो शरीर स्वस्थ हो जाता है, लेकिन स्वस्थ शरीर से सारे लोग बेचैन रहते हैं ना, समस्या तो यहां खड़ी हुई है। स्वस्थ शरीर के होते हुए लोग बेचैन रहते, तो इस बेचैनी का इलाज क्या है, उसके लिए नीति क्या है, सत्पुरुषों ने इसके लिए नीति बनाई है। वो कहते हैं अगन स्वरूपी कामना हृदय करे अंगार, तिस जन पाई शांति जिन सिमरा सरजनहार। ये जो हमारे अंदर कामना है, ये तृष्णा है, ये अग्नि के समान है जो सबका हृदय जलाती है, अंगारे के समान, और इसे छुटकारा पाने का इलाज क्या है? तिस जन पाई शांति जिन सिमरा सरजनहार। जो ईश्वर का सिमरन करता है वो इस अग्नि से मुक्ति पा जाता है। तो इसीलिए आप विचार करिए कि सारी जो कर्म नीति है वो इस वास्ते है कि मनुष्य ईश्वर का सिमरन करने में सफल हो सके। तो किस प्रकार से मनुष्य कर्म करे, यहां अब शास्त्र को गाइड करते हैं। सबसे पहली बात वो क्या कहते हैं कि कर्म की बेचैनी से बचने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जो शास्त्रों में बयान किए गए, संतों की वाणी में बयान किए गए, उनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात वो कहते हैं जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। सबसे पहली चीज तो मैंने ये सीख ली, इसी को सत्पुरुषों ने प्रारब्ध करके कहा है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु आज्ञा में हो रहा है, उसके बिना तिल मात्र भी आगे पीछे नहीं हो सकता, चाहे मैं कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना करूं, यदि होना है वो होके रहेगा। ये एक संसारियों के लिए अजीब अजीब सी बात है, खासतौर से अहंकारी लोगों के लिए। यद्यपि ये विज्ञान है क्या, विज्ञान ये है कि मेरे पिछले भी कई जन्म हो चुके हैं और उनके अनुसार जो इस जन्म में मैंने कर्मफल भोगना है उसी के अनुसार मुझको ये आयु मिली है और ये शरीर मिला है, इसके लिए जो होना है वो होके रहेगा। तो उस करके ही, उस प्रारब्ध करके ये वाणी कह रही है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा मानी। है तो तेरा ही कर्मफल, तो नहीं इसकी कमाई की है, लेकिन कब तुझको मिला है, कैसे मिला है, इसका कमांड तेरे हाथ में नहीं है, इसका कमांड प्रभु के हाथ में, इसलिए इस फल को देने वाला वो प्रभु है। और वो होके रहेगा, ये मैंने ये बात सीखनी है। इस बारे में देखिए सत्पुरुषों की बात ही अंतिम होती है। एक आपको वार्तालाप सुना रहा हूं मैं, महर्षि रमण से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि मन में उसके डाउट आ गया कि भाई जब हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है तो आखिर कर्तव्य कर्म भी हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो प्रश्न पूछता है वो महर्षि रमण से कि महर्षि हमारे लिए कर्तव्य पालन उचित है अथवा नहीं। तो महर्षि क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं अवश्य है। यदि तुम अपना कर्तव्य पालन ना करने का प्रयास भी करो तो तुम्हें बाध्य होकर कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। जिस कार्य हेतु इस देह का संसार में आगमन हुआ है उसे उसकी पूर्ति करने दो, यही प्रारब्ध है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन को प्रिय हो अथवा अप्रिय उसे युद्ध में संलग्न होना ही होगा। तुम्हारे सम्मुख निर्धारित कर्तव्य होने पर तुम उससे बच नहीं सकते और ना ही तब तुम्हारा कर्मरत रहना ही संभव है जब तुम्हें कर्म करने की बाध्यता ना रह गई हो। संक्षेप में कर्म चक्र चलता रहेगा और तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा। तुम्हारे लिए जितना निर्धारित का अंश है उसे पूरा करना होगा। तो आगे कहते हैं वो कि फिर इससे मुक्ति का रास्ता क्या, वो क्या कहते हैं, नाटक के अभिनेता की भांति इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना संभव है। ये बात है कि अर्जुन कितना विकट कर्म कर रहा है कि युद्ध भूमि में उसने हजारों लाखों लोगों को मारना है और वो जानता है कि मैं इनको मारने में समर्थ हूं, मेरे पास वो कला है। उसके अपने ही रिश्तेदार हैं, अपने ही गुरुजन हैं, ऐसे विकट कर्म को वो करना नहीं चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तू कर, फिर भी वो धनुष नहीं उठाता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि करना और ना करना तेरे अधिकार में नहीं। वो कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। ये तीन चीजें, ये बड़े ही एक प्रसिद्ध सिद्धांत है गीता का। देखिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात वो क्या कहते हैं कि तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। ये बात क्यों कह रही है, इसलिए कह रही है हो सकता है मैं मेहनत करूं मेरे नंबर अच्छे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मेहनत करने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि मैं पास होने के बजाय फेल भी हो सकता हूं। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो सकती हैं कि मैं परीक्षा ही ना दे पाऊं, मुझे फीवर इतना तेज हो जाए, सारी मेहनत करी कराई रह गई। तो कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। तेरे अंदर यह विश्वास रहना चाहिए कि फल प्रभु के हाथ में है, सफलता मिलनी नहीं मिलनी उसके हाथ में है, मेरे हाथ में कर्तव्य कर्म करना है, उसको मैंने होशियारी से करना है। गुरुदेव ने एक बार एक पत्र लिखा प्रेमी को इसी विषय में। देखिए ये कर्म विज्ञान बड़ा स्पष्ट करता है। गुरुदेव लिखते हैं इस जगह के अच्छे या बुरे कर्मों का असर हर एक जीव पर पूरा सफलता युक्त प्रतीत नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने मेहनत करके परीक्षा दी, मेरे मार्क्स आना चाहिए थे 80%, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे मार्क्स आ गए 50%, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो इसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अच्छे कर्म करने वाले इस जगह के अच्छे या बुरे कर्मों का असर हर एक जीव पर पूरा सफलता युक्त प्रतीत नहीं होता। जैसे कि अच्छे कर्म करने वाले दुखी और बुरे कर्म करने वाले सुखी विचरते हुए मालूम होते हैं, ये आम हमको देखने को मिलता है। सो कई जन्मों के कर्म समय समय पर फल देते हैं, इस वास्ते जो बुरे कर्मों में सुख प्राप्त कर रहा है उसको किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसे ही अच्छे कर्म करने पर भी दुख की प्राप्ति का कारण पिछले जन्म के मलिन कर्म ही है। यह कर्म चक्र प्रारब्ध का खेल है, समय आने पर वर्तमान कर्म भी अच्छा बुरा फल अवश्य देंगे। गुणी पुरुष को पूरी कोशिश करके अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि बिगड़ी हुई सुधर जावे और भविष्य सुखदायी हो। तो देखिए बड़ा ही स्पष्ट ये दो ऋषियों की बात थी और भगवान कृष्ण की भी। इसीलिए वो कहते हैं कि सकल कर्म का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है क्या कि हमने कर्ता परमेश्वर को जानना है, क्योंकि मेरे हाथ में कर्म फल नहीं है। कर्म तो मेरे हाथ में करना ना करना, लेकिन वास्तव में देखा तो कर्म भी मेरे हाथ में नहीं। जैसा कि महर्षि रमण कह रहे हैं कि जब तेरा कर्म करने का वक्त नहीं रहा तब तू कर्म से स्वतः ही हटा लिया जाएगा, और यदि तू नहीं चाह रहा कर्म करना तो जबरदस्ती कर्म में झोंक दिया जाएगा। इसी बात को तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तेरे प्रारब्ध में युद्ध करना लिखा हुआ है, तुझको युद्ध करना ही पड़ेगा। तब भी जब अर्जुन की समझ में नहीं आया तब उन्होंने अपना मुंह खोलकर वो दिव्य दर्शन दिखाया कि देख ये सबको मैंने पहले ही मार रखा है, तू मात्र एक माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा मैं ही काम कर रहा हूं। तब अर्जुन की समझ में आया और उसने गांडी उठाकर युद्ध किया। तो समझने की बात यह है, इसीलिए वो कहते हैं दूसरी बात जो थी इस श्लोक में कि और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे, अर्थात तू मत कह कि मैं कर्म नहीं करूंगा। क्यों? यदि मैं कहता हूं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, इसका मतलब मेरे अंदर अहंकार है कि मैं चाहूं तो करूं चाहूं तो ना करूं, मुझको ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि यदि मेरे शरीर के द्वारा कोई कर्म होना है वो होके रहेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। तो कहते हैं तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। जिस प्रकार अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करता, इसका मतलब तेरे अंदर अहंकार है कि तेरे करने से होगा तेरे ना करने से नहीं होगा। जबकि भगवान कृष्ण उसको यह समझाना चाह रहे हैं कि तू चाह या ना चाह, लेकिन तेरे प्रारब्ध में यदि कोई कर्म लिखा हुआ है वो तुझको कर्म करने के लिए तू उसको मजबूर कर दिया जाए। ये बात समझने की है, इसीलिए हमने ईश्वर विश्वास धारण करना है और ये अपना कर्तापन हमने त्यागना है। इसीलिए करके इस करके ये बात कही जाते हैं कि सकल कर्म का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है। कई बार ऐसा हो जाता है हम लोगों में, देखते हैं हम जहां कोई ईश्वर भक्ति करने चला कहता भाई मेरे कर्म तो छूट गए, वो सबसे पहले निकम्मा हो जाता है। और एक बार महाराज जी से प्रश्न कर दिया, महाराज जी वेदांत की शिक्षा जो है मनुष्य को निकम्मा बनाती है, ये गुरुदेव से प्रश्न कर दिया किसी व्यक्ति ने, जबकि महाराज जी कहते थे प्रेमी देखो जितना भी संसार का कल्याण किया है इन सन्यासियों ने किया है, जो ईश्वर के भक्त हैं उन्होंने ही संसार का कल्याण किया, सारा बलिदान तो उन्होंने ही दिया। तो इसलिए वाणी क्या कह रही थी कि हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा राम, अनन भगत कर छूटिए मिटे 84 जहां। ये नीति है हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा राम, कि हाथ पांव तेरे कर्म में संलग्न रहते हुए भी तू नाम जप सकता है, हर वक्त ईश्वर की याद कर सकता है, तुझको कर्म करना नहीं आता इसलिए तू कहता है कि कर्म में फंस गया, ईश्वर की याद में कैसे करूं। यदि ये बात सत्य नहीं होती ये वाणी क्यों कहती है ये बात कि हाथ पांव नित कर्म में, हमेशा हाथ पांव में कर्म में संलग्न रहते हुए भी मन में साचा राम, कि मन तेरा ईश्वर का स्मरण करता रहे, ये नीति हमने सीखनी। तो इसके लिए जरूरी है जो आपको सिद्धांत बताया गया कि सबसे पहले हमको ये विश्वास हो कि जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाए, कि जो कुछ भी घटना घटित हो रही है वो या तो यूं समझ लिए कि मेरे कर्म फल के अनुसार ही हो रही है, या यूं कहिए कि प्रभु की आज्ञा में हो रही है। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, ये बात एक ही है। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, मेरे सामने जो कर्तव्य कर्म पड़ा हुआ है मैंने उसको ईमानदारी से पूरा करना है। आज मेरे पिता बूढ़े हो गए, 95 साल के हो गए मान लिया, पहले तो मुझको पिता बड़े प्रिय थे, क्यों कि वो मेरी सेवा करते थे, पैसा देते थे, सुख देते थे। आज वो 95 साल के हो गए, अब वो अपाहिज हो गए, अब वो हाथ पर भी नहीं हिला सकते,
अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मैं तो अच्छा फंसा, मुझको छोड़ाओ।
नहीं,
तेरे सोचने का यह तरीका नहीं होना चाहिए। तेरे सोचने का तरीका यह होना चाहिए कि प्रभु ने इनको मेरे पास भेजा है, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, इस समय जितनी मेरी सामर्थ है उसके अनुसार मैंने इनकी पूरी सेवा करनी। इनकी मौत जब आएगी तभी आएगी, और जब तक ये लेन देन पूरा नहीं हो जाता, इनका जो कर्ज मेरे ऊपर है वो मैंने पूरा उससे उऋण होना है, उसको चुकाना है मैंने। तो यदि मैं प्रभु से प्रार्थना करूं उनके मरने की, इसका मतलब मैं अपने कर्ज को बचा रहा हूं, कर्ज लेके मैं मरूंगा क्या? तो मैंने अपना सारा कर्ज चुकता करना है, और जब तक वो मेरा कर्जा ये चुकता हो नहीं जाएगा, उनके प्राण निकलने वाले नहीं है, चाहे मैं कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करता रहूं। तो इसके नीति क्या होनी चाहिए? नीति ये होनी चाहिए थी कि मैंने उनकी प्रेम से सेवा करनी थी। यदि मैं प्रेम से सेवा करता तो दो बातें, दो फायदे होते मेरे, कि सबसे पहला तो मेरा ऋण जो था वो चुक जाता, दूसरी बात कि बुढ़ापा कितना दुखरूप है, ये मौत पल पल करके कैसे आती है, एक दिन मेरी भी आएगी, एक दिन मेरा भी बुढ़ापा आएगा, तो तुझको अपना जो भविष्य है वो तुझको दिखाई पड़ जाता। तो तू जीते जी जिस समय तेरे शरीर में सामर्थ्य थी, इस दिन की तू तैयारी करता, होश में रह के तैयारी करता। तो यदि इस विज्ञान को हम समझ लें, हम जो लापरवाही करते हैं, जो हमारे सामने संसार का फिक्र करना रहता है, जो कर्तव्य हमारे सामने आया वो तो हमने पालन कर रही है, चाहे हम जबरदस्ती करें चाहे हम अपनी इच्छा से करें। तो जबरदस्ती करके करोगे तो रोगे, भगवान को भी कोसोगे, समाज को भी कोसोगे, अपने पेरेंट्स को भी कोसोगे। लेकिन ज्ञान के साथ करोगे तो सेवा बन जाएगी आपकी, ऋण से उऋण हो जाओगे और वो सेवा बन जाएगी। ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होगा, ईश्वर की भक्ति आपके अंदर जागृत होगी, मौत की याद बनी रहेगी। तो ये नीति सत्प्रशम को सिखाते हैं। तो इसीलिए देखिए अंतिम जो वाणी का दोहा था वो जरा समझने की चीज है। वो कहते हैं कर्म वासना भ्रम जीव को। देखिए सारा विज्ञान कर्म का कहां खड़ा हुआ है। कर्म वासना भ्रम जीव को तीन काल भरमाए, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। कि मनुष्य के अंदर जिस पर प्रारंभ में बात कही गई थी, मनुष्य का स्वभाव है कि कर्म करने की इच्छा उसके अंदर निरंतर उठती रहती है। कर्म करने की इच्छा क्यों उठती है? क्योंकि निरंतर उसको कोई ना कोई कमी दिखाई देती रहती है, कोई ना कोई कमी। आप कितना भी किसी भी फील्ड में अच्छे से अच्छा कर लिए, बढ़िया से बढ़िया डिजाइन के कपड़े सिलवा लिए, आप देखिए थोड़ी देर में डिजाइन पुराना हो जाएगा, मन करेगा कि मैं नए डिजाइन के सिलवाऊं। मकान बड़े अच्छे से अच्छा बना लिए, आप बना के जैसे ही खड़े होंगे तुरंत आप कहेंगे भाई मुझे अनुभव नहीं था, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। बनाते ही खड़े होंगे आपको कमी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। मनुष्य का स्वभाव ही है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उसको कमी अनुभव होती है। इस कमी के कारण ही उसके अंदर नई इच्छा पैदा होती है उस कमी को दूर करने के लिए। तो यही कर्म वासना है। लेकिन वो कहते हैं यह भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि मैं सोचता हूं कि इस कर्म को करने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद भी मैं अपने अनुभव से यह बात नहीं सीख रहा हूं कि आज तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो आगे भी कैसे हो जाऊंगा। मेरा बार बार जन्म इसीलिए तो होता है कि असंतुष्टि की हालत में शरीर त्याग करता हूं और उस जो वासना मेरी अंतिम होती है उसके अनुसार मुझे नया शरीर मिलता है और फिर मैं उसी की दौड़ में लग जाता हूं। तो ये प्रक्रिया मेरी जन्म जन्मांतर से चल रही है। बचपन से आज तक तो मुझे याद ही है, कम से कम पिछले जन्म को छोड़ भी दें, बचपन से आज तक की तो याद है। तो अब तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो आगे भी संतुष्ट कैसे होऊंगा? तो इसलिए कहते हैं ये भ्रम है। कर्म वासना भ्रम जीव को तीन काल भरमाए। पास्ट में भी तुझको तू परेशान होता रहा इसी कारण, और वर्तमान काल में भी परेशान हो रहा है, और भविष्य में भी परेशान होगा। तो इसलिए कहते हैं इसका इलाज क्या है? इलाज कहते हैं कि मंगत नाम प्रभु सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। कि प्रभु का नाम स्मरण करके ये रोग तेरा जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। सारे रोगों की जड़ यही रोग है। तो जितनी भी धर्म नीति है वो इस मार्ग पर चलने के लिए है। और मार्ग धर्म का क्या है? बात अंत में क्या आती है
कि ईश्वर का स्मरण
क्यों। देखिए बुद्धि हर वक्त कुछ ना कुछ स्मरण कर रही है, हर वक्त कुछ ना कुछ याद कर रही है। आप कभी भी बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए देख लीजिए, आप कोशिश करिए मैं कुछ ना सोचूं, आप 100% सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये संभव ही नहीं है कि मनुष्य अपनी सोच को रोक सके। इस लगातार चिंतन को ही स्मरण कहते हैं या स्मरण करना या याद करना कहते हैं। तो ये कौन याद कर रहा है, मैं ही तो याद कर रहा हूं। इस मैं को ही प्रारंभ में जैसे कहा गया कि सत्पुरुषों ने बुद्धि करके या जीव करके या जीवात्मा करके कहा है, यही मनुष्य है। तो मैं निरंतर स्मरण कर रहा हूं, लेकिन जिस चीज को मैं स्मरण कर रहा हूं वो चीज मुझको बेचैन कर रही है। सीखना मैंने ये, मैं संसार की कमियों का ही तो विश्लेषण कर रहा हूं, उसी को तो याद कर रहा हूं, और उस कमियों को दूर करने के मैं फार्मूले तलाश कर रहा हूं, यही तो मैं कर रहा हूं। और मेरे सुबह से रात तक प्रयास करने का और मतलब क्या है। तो निरंतर मैं कमी का स्मरण कर रहा हूं और उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, और इस प्रक्रिया में मेरी निरंतर बेचैनी कायम है। इसी को ही अशांति, इसी को ही दुख या इसी को ही मानसिक क्लेश कहते हैं। तो इसका रास्ता क्या है फिर? बड़ी सीधी सी बात है, यह स्मरण मेरा बंद हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं। भाई यदि किसी को नींद आ रही है, स्वप्न दिखाई पड़ना बंद हो जाए, उसको वो शांत है फिर? ऐसा व्यक्ति आपने बेचैन कभी देखा है जो गहरी नींद आ रही हो, स्वप्न दिखाई ना पड़ रहा फिर भी वो बेचैन हो? नहीं होता ऐसा। मन शांत होते ही मनुष्य शांत हो जाता है। तो वो शांत चीज क्या है? उस शांत वस्तु का नाम ही ईश्वर है, उसी का नाम आत्मा है, वो भी इस शरीर के अंदर ही स्थित है। तो सत्पुरुष इस विज्ञान को जानते हैं, उन्होंने इसको करके देखा है कि ईश्वर का स्मरण करके ये मन का जो क्लेश है, मन का जो स्मरण है, मन संसार का जो स्मरण है, ये बंद हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि स्मरण पूरी तरह से बंद हो जाता है और ईश्वर का स्मरण हर वक्त होता रहता है। पहले तो ये जो भी मंत्र या मनुष्य नाम याद करता है अंदर, किसी गुरु का दिया हुआ या कोई सिद्ध मंत्र, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि स्मरण करते करते एक लंबे वक्त के बाद ये ऑटोमेटिकली अंदर चलता रहता है। उसके बाद जो असली ईश्वर का नाम है वो प्रकट हो जाता है, या यूं कहिए असली ईश्वर की शक्ति अंदर प्रकट जाती है। बुद्धि फिर उसमें लगी रहती है। उस समय इस मनुष्य को होश आता है या बुद्धि को होश आता है, अरे इस मन की याद में तो कितनी बेचैनी थी और इस ईश्वर की याद में कितनी शांति। तो इसीलिए हमको सारे शास्त्र निष्काम कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना सरल बात नहीं है, इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि निष्काम कर्म तुम एकदम से तो नहीं कर सकते। इसकी प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले तुम जो पाप कर्म कर रहे हो वो करना बंद करो। आप जानते हो हम सब इतने होशियार हैं, इतने बुद्धिमान, हम जानते हैं हम क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तुम गलतियां जान के जो कर रहे हो वो बंद करो। खाने पीने में, दूसरे से बातचीत करने में, दूसरे साथ व्यवहार करने में, पैसे की कमाई में, जहां जहां हम गलतियां कर रहे हैं उसको बंद करो। उसके पश्चात जब आपका व्यवहार बिल्कुल शुद्ध हो जाए, फिर कहा जाता है कि अब तुम कुछ त्याग करना शुरू करो। संसार की वस्तु को जो तुमने इकट्ठा किया है, इसको दूसरे के दुख को दूर करने में इसका उपयोग करना सीखो, सेवा करना सीखो, और बिना किसी कामना के कि इसके रिटर्न में मैंने कुछ लेना नहीं है, इससे मात्र मैंने इसकी सेवा करनी है, इसका दुख दूर करना है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ईश्वर की याद भी करो। तो क्या होता है, जिस समय मनुष्य ईश्वर की याद करता है उस समय उसको अपने कर्म भी याद आते हैं। जब कर्म याद आते हैं परेशान होता है, अरे मैं तो ईश्वर की याद करने बैठा था, आ रहे हैं मुझको कर्म याद, ये क्या हो रहा है? अब तो मेरे अंदर ईश्वर की याद करने की इच्छा पैदा हुई है, ईश्वर की याद करने के लिए ही मैं 1 घंटे के लिए बैठा हूं, लेकिन मुझको ईश्वर याद आ ही नहीं रहा, संसार के कर्म याद आ रहे हैं। उस समय जब ये शास्त्रों को पढ़ता है तब इसको समझ में आती है कि निष्काम कर्म की बात सत्पुरुष क्यों कहते हैं, ये नीति उन्होंने क्यों बनाई है। क्योंकि निष्काम कर्म का मतलब होता है, वही बात आती है कि जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाए। कि मैं भले ही कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए मुझको चिंता क्यों हो रही है। इस प्रकार से जब वो ईश्वर प्रायण होता है तब उसके अंदर कर्म के प्रति जो आसक्ति है वो उसकी टूटती है। जो कर्म की आसक्ति टूटती है, कर्म का मतलब उसके फल के प्रति जो आसक्ति है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, इसके कारण जो परेशान रहता है, जिसके कारण वो ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता, जिस प्रकार से निष्काम होकर ईश्वर परायण होकर कर्म करता है, ईश्वर की आज्ञा में उसको देखता है कर्मफल को, तब वो प्रभु की याद करने में सफल हो जाता है। इसीलिए अंत में गीता कहती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तू सारे धर्मों को त्याग कर, धर्म का मतलब कर्म के प्रति जो तेरा निश्चय बना हुआ है, चाहे भले वो कर्तव्य कर्म हो, तेरा जो कर्म के प्रति निश्चय है यही धर्म है, तो विभिन्न रूप में अपना रखें। तो कर्मों के प्रति अपने निश्चय को त्याग कर मेरे में निश्चय अपना धारण कर कि प्रभु की कृपा से होगा, मेरे करने से ही मेरी मनमानी चीज नहीं हो सकती। कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप का मतलब मानसिक बेचैनी, और पाप का कोई मतलब नहीं होता है। आप पाप करके देख लो, मन आपका बेचैन हो जाएगा। तो मानसिक बेचैनी ही पाप है। जितना बड़ा पापी वो मानसिक रूप से उतना ही बेचैन है। इसीलिए पापी ज्यादा दुखी होता है, पुण्यात्मा कम दुखी होता है। तो मा शुचः, अर्जुन तू शोक मत कर, मेरे परायण हो जा, अपने आप को मेरे समर्पित कर ले। मैं जैसा कहता हूं वैसा तू कर, जैसा तुझको मार्गदर्शन मैंने दिया है उस मार्गदर्शन के अनुसार तू कर्म कर, तू सारे पापों से सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा और एक दिन तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा, अर्थात ईश्वर में ही लीन हो जाएगा। तो देखिए, यह है संक्षिप्त रूप में कर्म विज्ञान, कि कर्म करते हुए मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कर्म करते हुए हमें इस बात का होश बना रहे कि कर्म तो मेरे हाथ में है, करना मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी मेरे सामने कर्म आया है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी एकाग्रता से कर रहा हूं, बड़ी कुशलता से कर रहा हूं, लेकिन फल में मैं ईश्वर आज्ञा मेरे निश्चय में बैठी हुई कि प्रभु चाहेंगे तो फल मेरे अनुसार होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। मेरा चिंता करना बेकार है। और मेरे संगी साथी जो हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, प्रभु ने जब इनको पैदा किया है तो इनका भी तो प्रारब्ध साथ में दिया है। हमारे बच्चे की शादी नहीं होती कितनी हमको चिंता हो जाती है। यदि इस प्रारब्ध पे हमारा पक्का विश्वास हो कि भाई जब शादी होगी या नहीं होगी ये प्रभु ने इसका लिख के भेज दिया है, तभी तो जो वास्तव में कुशल ज्योतिष है वो आपका भविष्यवाणी कर देता है कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा। यदि कोई विज्ञानी नहीं है तो कैसे भविष्यवाणी कर देगा वो? देखिए, हम चिंतित हो जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं। तो याद रखिए, यदि हमने इस कर्म विज्ञान को समझा और इस कर्म विज्ञान का आधार है ईश्वर विश्वास, इसीलिए सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है ईश्वर विश्वास, जो हमको बेचैनी से दूर करती है। तो जिसके अंदर ईश्वर विश्वास है वो इस कर्मफल सिद्धांत को पर विश्वास करके अपना कर्तव्य कर्म पूरी ईमानदारी से करता है, करने के बाद बेचैन नहीं होता। इस प्रकार वो ईश्वर का भजन करकर ईश्वर का एक दिन दर्शन अपने ही अंदर करता है और पूर्ण संतुष्ट होकर इस संसार से विदाई प्राप्त करता है। ओम धर्म सत्य।